दम ज़रिया इलाज, किताबो सुन्नत की रोशनी में आज हम इसका अगला सेशन शुरू करेंगे। जादू हो जाने के बाद इसके इलाज के चंद तरीके। अभी तक हमने क्या देखा कि वो असबाब जिनकी वजह से जादू को होने से हम रोक सके, यानी हम पे जादू ना हो। अब हम देखेंगे कि अगर बिलफर्ज किसी पे जादू हो गया, आपको शक है या कोई आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मेरे ऊपर इस तरह की कैफियत है, तो फिर क्या तरीका है। किताब के एतबार से पेज नंबर 10 है, बिल्कुल शुरू से आइए पढ़ते हैं। दूसरी किस्म, जादू हो जाने के बाद इसके इलाज के चंद तरीके। पहली किस्म क्या थी? जादू होने से पहले इलाज के तरीके। यहाँ क्या तरीके हैं? नंबर एक, जादू होने के बाद अगर इस जादू की जगह मालूम हो तो शरई तरीके से इसको जायल करना, ये सबसे मुअस्सर तरीका है। ये देखिए, जादुल मात की रिवायत है, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ था आपके दौर में, तो आपने फिर उस कुएं से जाकर वो कंघी निकलवाई थी जिसमें आपके बालों पर गिरहें लगवाई गई थी। तो अगर मालूम हो जाता है ना कि जादू किया हुआ है, किसी ने कहाँ रखा है, बाज़ दफ़ा लोग तावीज़ों की शक्ल में कर देते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ, और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सीधी सोच दे, सीधी समझ दे, क्योंकि आज ये दौरे जाहिलियत दोबारा आ गया है। सीरत में तो हम नबी सल्लम की आमद से पहले का दौरे जाहिलियत पढ़ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ आपको आज के दौर में देखेंगे तो हदीस सच होती हुई साबित होती है कि मेरी उम्मत में भी लोग जादू टूना और इस किस्म की ओहाम परस्ती का शिकार हो जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है? नंबर एक, अगर आपको यकीन है कि आपके ऊपर जादू हुआ है या किसी ऊपर जादू हुआ है और उसके कुछ असरात नजर आ गए हैं, तो फिर उसको जाकर खत्म करें। मसलन आपको मैं एक छोटी सी सिंपल सी मिसाल देती हूँ। आपके घर से तावीज निकलते हैं और आप देखते हैं कि उन तावीज़ों के अंदर यानी कुछ उल्टम पुल्टम बातें लिखी हुई हैं, आप उसको खोलते हैं, या आपको घर में कोई एक ऐसा पुतला या कोई मिट्टी का या आटे का बना हुआ कोई एक ऐसा स्टैचू दिखता है, उसके अंदर पिन्ने लगी हुई हैं, बगैर किसी से पूछे, बगैर मशवरा किए आप उसको ज़ाया कर दें। मसलन आप देखिए कि तावीज़ है, बहुत सारे लोग डरते हैं तावीज़ खोलते हुए, किसी के गले में है या आपको घर में कपड़ों से कपड़े ठीक करते हुए उसमें से तावीज़ नजर आ गया। अब बस लोग खौफ डरते, हाय पता नहीं इसमें क्या है। देखिए ये भी ईमान की कमजोरी है कि आप तावीज़ से डरें, आप इसको क्या करें, तावीज़ को फौरन खोलें। आप सोचा करें है क्या, यानी आप देखिए कि जैसे ये खजूर रखी हुई है ना, इस किस्म की एक छोटी सी चीज़ आपके घर से निकली, बाद वह चमड़े के कवर में वो सिला होता है, अक्सर तो सिल्वर रंग का लोहे का कुछ इस तरह का कवर होता है, उसको फौरन खोले। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर में एक औरत काम करती थी, तो आप कहते हैं कि जो गाँव के लोग हैं बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, उनमें ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो ऐसी उससे बात हुई कि आप पढ़ सकती हैं, आप कुछ और भी, लेकिन ये गले में पहनने नहीं चाहिए, इसका हुक्म नहीं। खैर थोड़ा सा उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो मैंने कहा लाओ दिखाओ ये है क्या ना। जब उसने उतारा, कहती अच्छा मैं नहीं पहनूंगी अपना, उतार दिया। तो मैंने उससे कहा कि खोलें जरा इसमें है क्या, मुझे भी तो जासूस था कि इसको देखे तो सही क्या। ना ना बाजी, जो आप कह रहे हैं ना वैसी थी वो, तो डर था उसको। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, फिक्र नहीं करो, हम खोलते हैं। वो भी साथ देख रही, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऊपर एक उसका ना वो जैसे स्टैम्प किया होता है सिल्वर से का कवर, हमने उसको खोला, अंदर से क्या निकला, कुछ सूखे पत्ते ऐसे बिल्कुल मुरछरे से, और एक कागज का एक टुकड़ा निकला। हमने कहा उसको खोल के देखते हैं। जब और खोला तो उसमें से इतनी स्मेल आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्योंकि जब वो पत्ता रखा होगा अंदर किसी ने तो सब्ज़ था, फिर ऊपर से बंद हो गया, अंदर कागज भी था, वो कागज भी गल चुका था। तो अब वो अंदर जब एक चीज को बंद कर दें, एक जिंदा चीज को, तो उसके अंदर सड़न तो होती है ना, स्मेल थी उसमें। खैर हमने वो कागज खोला, यकीन करें लकीरें ऐसे जायचे बने हुए, टिक टिक, कोई इधर लाइन कोई उधर, और उल्टे सुधे लफ्ज, यानी जैसे आप देखिए लोग अमूमन फरिश्तों के नाम लिख रहे होते हैं ना, जिब्राइल मिकाइल। मैंने कहा बताओ तुम इससे डर रही थी? कहती बात याद है जो थे, कुछ भी नहीं निकला। तो मैंने कहा ये एक खौफ दिलों में लोग बिठा देते हैं, आप फौरन उसको काटते हैं, पानी में डाल दें, फेंक दें, कोई पुतला निकल आता है। इसी तरह घर में आपको कोई अनयूजुअल चीज दिखती है, समटाइम लोग कहते हैं हमारे घर में खून के छींटे पड़ते हैं, बास कहते हैं कपड़े जो हैं वो कटे हुए होते हैं, आपको कोई अनयूजुअल चीज दिखे तो आप पकड़िए और उसको जाया कर दें। ये इसका पहला तरीका है, ठीक है। दूसरी चीज, शरई दम के जरिए इलाज करें, और शरई दम की तफसील क्या है? अब आप देखिए कि ये वो चीजें हैं जो आपको हर चीज का नीचे हवाला दिख रहा है, अगर ये हवाले ना होते तो हम कभी भी आपको ये ना पढ़ाते, बात समझिएगा। आप ये ना सोचे कि आपके पास पहले ही बहुत सारे वजीफे थे और अब आपको इस बुक में नए वजीफे भी दे दिए गए, और उन वजीफों में और इन वजीफों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। सब तवज्जो रखें इस बात पे। अब जो वजीफे या कुरान की आयतें या दुआएं हम सीखने लगे, इसमें और कोई राह जाते आपको किसी के बताने में फर्क है कि इसके नीचे हवाला मौजूद है। नबी सल्लम ने ये काम किया था। इसमें क्या है? पहली चीज क्या है, दो पत्थरों या इसी तरह की किसी और चीज के दरमियान बेरी के साथ ताजा पत्तों को मसला जाए। बेरी समझते हैं ना, वो यहाँ बेरीज बोलते हैं गालिबा, या बेरियां छोटे छोटे जो बेर होते हैं पाकिस्तान में, उसके आप सात पत्ते ले लें और फ्रेश लीव जो उनको आप जैसे चॉप कर लें किसी भी चीज में। वो पहले दौर में तो कुंडी डंडा लोग यूज करते थे, सिल बट्टा भी होता है, उसको पत्थर की किसी चीज के साथ मसल लें। फिर इन्हें इतने पानी में डालें कि इससे गुसल हो सके। ठीक है, पानी यानी एक टब पानी या एक बाल्टी पानी डाल लिया उसमें, और इस पर ये आयात पढ़े, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ। सूरत बकरा की आयत नंबर 55 है, जिसको हम सब क्या कहते हैं, आयतुल कुर्सी। तर्जमा देखिए कितना खूबसूरत है। आप देखिए कि आयतुल कुर्सी जादू का तोड़ क्यों है, क्योंकि इसमें अल्लाह तआला के 25 नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो अल्लाह ताला का नाम जहां आ जाता है वहां शयातीन को अपना कब्जा करने का मौका नहीं मिलता। तर्जमा भी देख लेते हैं, अल्लाह ही माबूदे बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊंगाए ना नींद, इसी की मलकियत में जमीन व आसमान की तमाम चीजें हैं। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शिफात कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वुसअत ने जमीन व आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से ना थकता है और ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। तो ये अल्लाह ताला की सिफात से भरी हुई आयत है। मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, दोबारा पीछे भी हमने देखा है कि अल्लाह की ये सिफात अगर बंदा खुद भी याद रखे, इन आयतों को पढ़ता रहे, तो अल्लाह के हुक्म से असर नहीं होता। पीछे हमने जब देखा था कि अगर हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम वैसे ही बचे रहते हैं। पांच नमाजों में हर नमाज के फर्जों के बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, सुबह की दुआ में पढ़ लें, शाम की में पढ़ लें, रात को बिस्तर पे जाके पढ़ लें, आठ दफा तो ये हो गया, आप देखेंगे कि आपको एक फीलिंग आएगी। और ये चीज बड़े जादू से छोड़कर छोटी चीजों का भी इलाज है। कभी आपको खौफ आता है, दिल डरता है, कभी आप घर में अकेले होते हैं, आपको महसूस होता है बाहर कोई है, गली में से चलने की आवाजें आती हैं, पर्दे के हिलने की आवाजें आती हैं, फौरन आयतुल कुर्सी पढ़े और थोड़ी सी आवाज के साथ पढ़े, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इससे आपका दिल मजबूत हो जाएगा। दूसरी जो आयतें वो सूरत अल अराफ की आयत नंबर 117 से 122 है, 117 से 122। वौहैना इला मूसा नल की असा कफ इजा हिय तलकफु मा याफिकून फवकल हक व बतल मा कानू यामलून फगुलिबू हुनालिक वनकलबू सागरीन वौलकी असहरतु साजिदीन कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा डाल दीजिए। सो असा का डालना था कि इसने इनके सारे बनाए हुए खेल को निगलना शुरू कर दिया। बस हक जाहिर हो गया और जो कुछ उन्होंने बनाया था सब जाता रहा। बस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे, और वो जो साहिर थे वो सजदे में गिर गए, कहने लगे कि हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का रब है। देखिए वाक्या भी जादू का ही है ना, तो ये आयात आपने कुरान में बहुत दफा पढ़ी है, तो ये आयात भी पढ़ने का इशारा मिलता है। तीसरा आयतों का हिस्सा कौन सा है? सूरत यूनुस की आयत नंबर 79 से 82, 79 से लेकर 82 तक आयात है। وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء سحرته قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون। और फिरौन ने कहा कि मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर कर दो। फिर जब जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो, यानी तुम पहल कर लो। जैसे कोई टीम खेलती है तो जिसने टॉस जीता लोग कहते हैं अच्छा जी आप पहले खेलेंगे या हम खेलें, वही बात है। सो जो उन्होंने डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है, यकीनी बात है कि अल्लाह इसको भी दरहम बरहम किए देता है। अल्लाह ताला ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता और अल्लाह ताला हक को अपने फरमान से साबित कर देता है, गो मुजरिम कैसा ही नागवार समझे। फिर इसके बाद अगला मुकाम है सूरह तौहा की आयत नंबर 65 से 70। या मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अक्सर लोगों के घरों में मंजिल नाम की एक छोटी सी बुक होती है, एक बुकलेट होता है वो यही आते हैं। अगर आपके घरों में मंजिल नाम की बुक है तो ऑलमोस्ट इसमें यही आयतें मौजूद हैं। सूरह तौहा की आयत 65 से 70 है। قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى। कहने लगे कि मूसा या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां इनके जादू के जोर से दौड़ रही हैं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल ही दिल में डर को महसूस किया। हमने फरमाया कुछ खौफ ना कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा और तेरे दाएं हाथ में जो है इसे डाल दे कि इनकी तमाम कारीगरी इसको निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया ये सिर्फ जादूगरों के कर्तव्य है और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। अब तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे कि हम तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। तो गोया के ये आयात पढ़ने के बाद इंसान के अंदर एक स्ट्रेंथ भी आती है, अल्लाह ताला के वादों पे यकीन है। फिर पांचवा मुकाम सूरत काफिरून है, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसको जानते हैं। 30वें पारे की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। आप कह दीजिए कि काफिरों ना मैं इबादत करता हूँ इसकी जिसकी तुम करते हो और ना तुम इबादत करने वाले हो उनकी जिनकी मैं करता हूँ और ना मैं इबादत करूंगा जिनकी तुम इबादत करते हो और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। देखिए अक्सर जादू करने कराने वाले जो लोग होते हैं ना ये मुशरिक होते हैं, काफिर होते हैं, अकायद इनके खराब होते हैं। तो ऐसी आयतें पढ़कर हम उनको ये बताते हैं कि तुम्हारे इस जादू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इसी तरह सूरत इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह ताला बेनियाज है, ना इससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई उसका हमसर है। फिर सूरत फलक और नास है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब इसका अंधेरा फैल जाए और गिरा लगाकर इनमें फूकने वालियों के शर से भी और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वो हसद करे। फिर सूरत नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ, लोगों के मालिक की, लोगों के माबूद की पनाह में, हट हट कर वसवसा डालने वाले के शर से। जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है मुराद कौन है? शैतान, ख्वाब वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। अब ये सारी आयतें जो हमने देखी, ये तमाम आयात पानी पर पड़ने के बाद इसमें से 3 घूंट पी ले और बाकी से गुसल कर ले, इस तरह इंशाल्लाह बीमारी खत्म हो जाएगी। बीमारी के इफाके तक अगर कई बार ऐसा करने की जरूरत महसूस हो तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। इस अमल का बहुत तजुर्बा किया गया है, अल्लाह ताला ने बहुत फायदा दिया, बिलखसूस जिसे अपनी बीवी की तरफ से जादू का अंदेशा हो इसके लिए ये बेहतरीन है। अब आप देखिए, फतावा इब्ने बास का ये फतवा, इसलिए हम इस पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो बात हमारे सामने है इसको आप लेकर देख लें कि ये अमल जो है इंसान को वाकई इन चीज़ों से रोकता है। अब आप देखेंगे कि ये सारा कुछ करने के बाद जो बंदा ये चीज़ें पढ़ रहा है वो फिजिकली और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट फील करेगा ना। आप कुरान की क्लास में आकर अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं। घर बैठे हो तो ज़रा बीमार नहीं थे, सुस्ती नहीं थी। कितनों ने सोचा था कि आज नहीं जाती, आज तबीयत ठीक नहीं, कल से शुरू करूंगी, लेकिन आ गए तो ठीक हो गए। डॉक्टर की दुकान पे आके बैठने से ही बंदा आधा ठीक हो जाता है। तो ये एक बरकत होती है, ये एक हमारी जिंदगियों में कुरान की तासीर होती है। मैंने ये चीज़ कसरत से फील की है कि जो बच्चे बहुत छोटी उम्र में स्कूल में आना शुरू हो जाते हैं ना, उनके कान इतने आदी हो जाते हैं तिलावत सुनने के, कभी कुछ दुआएं चल रही हैं, कभी कोई लेक्चर चल रहा है, उनको समझ ना भी आए लेकिन उसका असर तबीयत पे आता है। इसके बरक्स आप देखिए कि घरों में मोस्ट ऑफ द टाइम घरों में म्यूजिक चले, अगर टीवी चल रहा है, गेम्स चल रही हैं, कंप्यूटर गेम्स हैं, तो आप देखें कि वो बच्चे बहुत थ्रिल पे आ जाते हैं, बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो ये सब कुछ करके हमने फिर भी ये कहना है कि अल्लाह तू ही ये सब कर सकता है, तो ही ये होगा, हम तेरे ऊपर नजरें रखते हैं, वरना ये काम हमसे मुमकिन नहीं है। और ये सारी चीजें करने के बाद भी ईमान रखिए, अगर अल्लाह शिफा देगा, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तभी सेहत होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के हाथ में है। हम दवा खाते हैं, उसके बाद भी दवा से फायदा कब होता है? जब अल्लाह ताला चाहता है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चले हम अगली नशिस्त में, क्योंकि बहुत सारी आज इसमें आयतें आ गई हैं, तो हम अगली नशिस्त में फिर कुछ और चीज़ें देखेंगे जो हमारे आपके अमल में आएंगी, और अल्लाह ताला चाहेगा तो हमें इससे बचाएगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि जिसके ऊपर जादू होता है तो वो बेचारा तो अपने हाल में ही नहीं होता, उसका क्या मामला है? फिर दूसरा पढ़ दे। ये ऐसे ही है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं ना, आप खुद करें, जो काम आप नहीं कर सकते फिर कोई दूसरा करे। जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप जब रात को बिस्तर पे जाते थे तो आप अपने हाथों पे कुल औज़ु बिरब्बिन नास फलक कुल हुवल्लाह अहद पढ़ के ऐसे फूंकते, और उसके बाद जहां तक हाथ जाता वहां तक आप उसको ले जाते। लेकिन अपनी बीमारी के दिनों में जब आप कमजोर हो गए, आप खुद नहीं पढ़ सकते थे, तो आप मुझे कहते थे कि आज तुम मेरे लिए ये काम करो। तो क्या पता चला? जो आप खुद कर सकते हैं वो खुद करें। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के जहनों में एक सवाल होगा कि ये सारी आयतें पढ़ने पढ़ाने और इसके इलाज के लिए फिर हम किसी बाबा जी को ढूंढें या किस तरह से ढूंढें, तो बाबा जी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपने लिए ये अमल कर सकते हैं। ठीक है, सुन लें। देखिए, आपको पता है कि आजकल रुखिया बहुत सारे ऐसे हैं, शरई रुकिया से इतने खूबसूरत भी हैं, कुरान की तिलावत ही है ना, तो आप लोग उसको सुने। मैंने खुद फील किया, जरा सा आप लेजी फील करें ना, सुस्ती है या कभी कभी इंसान हो जाता है ऐसे ड्राउजी सा, आप वो सुने, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। तो अगर खुद पढ़ नहीं सकते तो सुन लें। ठीक है, चलो ठीक है यार, रुकते हैं फिर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।